आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। आज की बात में हम चर्चा करेंगे भारत नियंत्रित कश्मीर में होने वाले आतंकी हमले की। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले भारतीय सुरक्षा बल CRPF के कारवां पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 से अधिक जवान मारे गए। ये घटना 14 फरवरी को हुई, जिसने दर्जनों परिवारों के साथ ही पूरे देश को शोक और आक्रोश में पहुंचा दिया। हर तरफ से इस घटना की निंदा की गई। हर पार्टी ने इस घटना पर दुख और पीड़ा व्यक्त की और साथ ही कठोर कदम उठाए जाने की मांग की। सभी दलों ने कहा कि वो इस मामले में सरकार के साथ हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर रोष व्यक्त किया।
मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताई।
जिन लोगों ने ये किया है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा बयान दिया।
हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी दल या व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। और पूरे देश को इस प्रकार के कायराना हमलों की निंदा करनी चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की वर्तमान में चल रही लड़ाई को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए।
पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना की निंदा की, लेकिन साथ ही सरकार की नीतियों की आलोचना भी।
कौन एक्शन टा करेछे पांच बछरे पाठानकोट से शुरू करे तुम्हारे ये पर्यंत कौन एक्शन टा करेछे? जखन इलेक्शन इज नॉकिंग एट द डोर तखन तुम्हार मने हलो जे देशे एकटा युद्ध बाधानो दरकार आर एकबार।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को भी लगता है कि सरकार से गलतियां हुई हैं, जिनके नतीजे में इस प्रकार के हमले हो रहे हैं।
अब देखिए, जितनी हमारी एजेंसीज हैं, जो सीक्रेट सर्विसेज की एजेंसीज हैं, उनसे वो काम न लेकर राजनीतिक काम लिया जा रहा है। कुछ ममता जी की जांच हो रही है, कुछ वाड्रा साहब की हो रही है, कुछ अखिलेश जी की हो रही है, इस खादिम के पीछे भी पड़े हैं और मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो हुआ है वो आपने देख ही लिया। उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उनसे वो कहलवा दिए जिससे उनका पूरा जीवन का बलिदान ही खत्म करा दिया। तो जांच एजेंसियों से जब काम लेंगे सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, बुरा तो होगा।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भारत की ओर से कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए।
पहले प्रायश्चित करो कि तुमने उसको छोड़ा था, याद है? जैसे मोहम्मद को, वो तो हमारे जेल में था, उसको हमने छुड़वाया। उसके लिए प्रायश्चित करनी चाहिए हम लोगों को और कहना चाहिए आगे ऐसा कभी नहीं होगा। तो तरीके होते हैं, उसको अपनाना चाहिए और इसको बोलने लायक नहीं है परंतु हैं और हमें उसको उपयोग करना चाहिए। लेकिन इस बार उनको नरेंद्र मोदी को विवश करना चाहिए, राम मंदिर जैसा नहीं छोड़ देना चाहिए।
प्रतिक्रिया के साथ इस घटना पर विवेचना भी शुरू हो गई। कुछ टीकाकारों और विचारकों ने इस प्रकार की घटनाओं की तह में जाने और कारणों को रेखांकित करने की कोशिश की। डॉक्टर राम पुनियानी ने इस घटना की भी समीक्षा की और साथ ही इस घटना पर कट्टरपंथी तत्वों की ओर से की जाने वाली निरंकुश प्रतिक्रिया पर भी टिप्पणी की।
तो पहले तो इस घटना के बाद पूरे देश के प्राय सभी लोगों ने इस आतंकवादी घटना की निंदा की और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को शांति से रहने की अपील की। पर उसके उलट जो जिस प्रकार की बातें चल रही हैं उसमें एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि जैसे एक घटना ने मुझे बहुत स्पर्श किया, मर्मस्पर्शी घटना है कि देहरादून में जो कश्मीरी विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे थे उनके ऊपर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों का हमला हुआ। आज खबर यह है कि जम्मू में बहुत सारे सांप्रदायिक तत्व वहाँ के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कश्मीरी लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत निंदनीय काम है और ये वास्तव में ये वही चीज़ कर रहे हैं जो आतंकवादी चाहते हैं। आतंकवादी चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान की यूनिटी, एकता वो कमज़ोर हो, और उसी को अंजाम देने का काम इस प्रकार के लोग कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद हुआ है, अब इसमें जो आदिल मोहम्मद दर ये लड़का है, ये आतंकवादी कैसे बना, इसका भी हमें देखने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसे आंकड़े आए हैं कि पिछले 4.5 साल में कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद की घटनाएं हैं वो 2013 में थी 170 और 2018 में हो गई 614, और जो हमारे सिक्योरिटी के लोग मारे गए थे 2013 में वो थे 53 और 2018 में जो मारे गए वो हो गए 91, और जो नौजवान मिलिटेंसी को ज्वाइन कर रहे थे 2013 में थे वो 16 और 2018 में हो गए 191, यानी पिछले 4.5 साल में जिस प्रकार की घटनाएं हुई उससे स्थानीय नवयुवकों के बीच में असंतोष ज़्यादा पनपा है। और ये जो आदिल मोहम्मद दर जो इसमें इन्वॉल्व था वो एक कश्मीरी था, जो एक भारतीय था, और उसने वो इस रास्ते पर गया। उसके बारे में उसके माता पिता का बयान है कि वो लड़का तब आतंकवाद के रास्ते पर जा गया जब वो उसने मिलिट्री के हाथ से बहुत बड़ी मार खाई, उसके बाद से उसमें परिवर्तन आने चालू हो गए। तो मुझे लगता है कि हम जब आज एक प्रकार के एक्शन की बात कर रहे हैं, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वही गतिविधि सफल होगी जो दूरगामी परिणाम को देखे और इस क्षेत्र में आतंकवाद की जड़ों को समाप्त करने के लिए काम करे।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बिहार की राजधानी पटना, हरियाणा, राज्य में कुछ स्थानों, जम्मू में कई जगहों तथा देश के अन्य भागों में कश्मीरियों और कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया गया। कश्मीरी छात्रों को गद्दार कहा गया और उनकी पिटाई की गई। देहरादून में लड़कियों के हॉस्टल को उग्र भीड़ ने घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। भारत की राजधानी नई दिल्ली तक में कश्मीरियों के साथ ऐसा व्यवहार शुरू हो गया कि वो डर गए। कश्मीर पुलिस ने भारत में अन्य स्थानों पर रहने वाले कश्मीरियों के लिए नंबर जारी किए कि यदि उन्हें कोई समस्या पेश आ रही है तो वे इन नंबरों पर सूचना दें। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले पर गहरी चिंता जताई। यही नहीं, भारत के प्रबुद्ध समाज से जुड़े लोगों ने भी कश्मीरियों के साथ सहानुभूति जताई और उन पर होने वाले हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। बात यही नहीं थमी, धीरे धीरे इसमें सांप्रदायिक रंग भी घुलने लगा और सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाने लगी। पुलवामा हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भर गई और पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी दिए गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इन बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया जताई।
मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए। एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा।
कश्मीरियों पर हमला हो या मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भाषा का प्रयोग करना या उन पर संदेह जताना और उन्हें गद्दार कहना, ये जो भी मामले हैं, हर मामले में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी जैसे दर्जनों चरमपंथी संगठनों के लोग आगे आगे रहते हैं। पुलवामा घटना के बाद इन संगठनों से जुड़े लोगों ने कई जगहों पर आगजनी भी की। भारत के वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी इस घटना और उसके बाद होने वाली प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की।
हमने तो नहीं सुना किसी टेलीविजन स्क्रीन पर किसी ने इस बात का जिक्र भी किया हो कि जो शहीद हुए जवान हैं उनका रिश्ता कहीं ना कहीं किसान के परिवारों से ही जुड़ा हुआ है। और इस देश में एक तरफ किसान राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, एक तरफ जवान की शहादत भावनात्मक तौर पर लोगों को लील लेती है और एक नई परिस्थिति आ जाती है जिसमें लगता है कि क्या कहा जाए और क्यों कहा जाए, खामोश रहा जाए, चुप रहिए, देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों से तो हम बात करते हैं तो कहते हैं, हुजूर ये वातावरण ऐसा है जिसमें हम लोग मुद्दों की बात क्या करें, हम कैसे कह सकते हैं। कश्मीर के ही बारे में बात कीजिए तो कश्मीर का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के साथ बैठकर, हमने उसको दिखलाया भी अपने न्यूज़ चैनल पे, कुछ उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कुछ जेएनयू के प्रोफेसर थे, तो उसमें जो बातचीत हो रही थी उसमें वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के भीतर भी मुसलमानों में भी एक सरोकार कश्मीर के मुसलमानों के साथ नहीं आ पाया है और कश्मीर के मुस्लिम्स को भारतीय समाज के भीतर में कोई रास्ता ही नहीं बना, कोई आदान प्रदान की परिस्थितियां बनी नहीं है कि एक संवाद भी हो सके। तो वो अपने एक स्थिति में अलूफ है, उसको जो वातावरण मिलेगा, जिस तरह का वातावरण मिलेगा उसमें वो ढल जाएगा क्योंकि आपने एक रास्ता बनाया ही नहीं है। तो ये सरोकार पैदा करने की स्थिति में हम लोग क्यों नहीं आ पाए।
ये बात सही है कि सारी समस्याओं को यदि राजनीति के चश्मे और चुनावी नफे नुकसान की कसौटी की दृष्टि से देखा जाएगा तो उनका समाधान मुश्किल है। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहिए कि हर मुद्दे का राजनीतिकरण उसके समाधान को और भी जटिल बना सकता है।